मार्गदर्शन।
श्रोता, साप्ताहिक कार्यक्रम मार्गदर्शन की एक अन्य कड़ी लेकर उपस्थित हैं जहरा जैदी और सैयद मीसम का सलाम स्वीकार करें।
पिछले कार्यक्रम में हमने महिला अधिकारों के बारे में पश्चिम में अपनाए जाने वाले अन्यायपूर्ण व्यवहार के बारे में चर्चा की थी। इस बारे में हमने आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली खमनाई के विचार प्रस्तुत किए थे। हमने इस महत्वपूर्ण बिंदु की ओर संकेत किया था कि पश्चिम में महिलाओं की स्थिति को समझने के लिए पश्चिमी साहित्य की जानकारी जरूरी है। इस बात को समझने के लिए हमें पश्चिम में महिलाओं के बारे में वहाँ के राजनेताओं के लोक लुभावन नारों से बचते हुए वहाँ के महान लेखकों की रचनाओं को समझना होगा। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली खामनेई कहते हैं कि पश्चिम में महिलाओं पर जो अत्याचार हुआ है और पश्चिमी संस्कृति एवं साहित्य में महिलाओं के संबंध में जो गलत सोच पाई जाती है वो पूरे इतिहास में अभूतपूर्व है।
इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली खामनेई ने इस बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर संकेत किया है। यद्यपि पश्चिमी देशों में एक समय तक महिलाओं को स्वामित्व का अधिकार नहीं था, किंतु जब उन्हें महिलाओं की आवश्यकता हुई तो वहाँ पर महिलाओं के स्वामित्व की आवाज़ उठने लगी। ये महिलाओं पर एक अन्य प्रकार का अत्याचार था। इस्लामिक क्रांति के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि औद्योगिक क्रांति के आरंभ में जब पश्चिम में कारखाने लगे और नई तकनीक सामने आई तो उस समय व्यापक स्तर पर मजदूरों की आवश्यकता हुई। ऐसे में उन्होंने महिलाओं को कारखानों की ओर आकर्षित करने के लिए जो नारा पेश किया वो महिलाओं के स्वामित्व के बारे में था। यद्यपि महिलाओं को बहुत ही कम मजदूरी दी जाती थी, पश्चिम में महिलाओं पर अत्याचार की ये नई एवं अतिवादी सोच थी।
जब ऐसे अन्यायपूर्ण वातावरण में महिलाओं के हितों के लिए कोई आंदोलन आरंभ होगा तो निश्चित रूप में उसमें अति पाई जाएगी। यही कारण है कि पश्चिमी इतिहास के एक कालखंड में हम इस बात के साक्षी रहे हैं कि महिलाओं की स्वतंत्रता का दम भरने वाले गुटों ने स्वतंत्रता के नाम पर जो बुराई फैलाई उसने बहुत से पश्चिमी विचारकों को चिंता में डाल दिया। पश्चिम में अनैतिकता इतनी अधिक बढ़ चुकी है कि वहाँ के विचारक और बुद्धिजीवी इसे रोकने में अक्षम हैं। महिलाओं को क्षति पहुँचाने में फेमिनिज्म गुटों ने जो भूमिका निभाई है वो बहुत ही खेदजनक है। इन गुटों ने पूरे विश्व में महिलाओं को बहुत क्षति पहुँचाई है। पश्चिम में नैतिक पतन इस सीमा तक हो चुका है कि वहाँ पर परिवारों के आधार ही हिल गए हैं।
पिछली लगभग दो शताब्दियों से फेमिनिज्म या नारीवाद आंदोलन का नारा यह है कि महिला को हर क्षेत्र में पूरी तरह से समानता का अधिकार होना चाहिए। फेमिनिज्म या नारीवाद शब्द का प्रयोग पहली बार फ्रांस में 1872 में किया गया था। नारीवाद आंदोलन के समर्थक चाहते हैं कि महिलाओं को हर क्षेत्र में पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त होने चाहिए। इस आंदोलन का दूसरा चरण प्रथम विश्व युद्ध के बाद आरंभ हुआ। उस समय आरंभ होने वाला यह आंदोलन अपने भीतर अति लिए हुए था। इसके ध्वजवाहक पूर्ण रूप से महिलाओं और पुरुषों के बीच समान अधिकार के पक्षधर थे। वे महिलाओं के लिए हर प्रकार की स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। इस कालखंड में नारीवाद की मांग करने वाले महिलाओं के लिए पूरी आज़ादी की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि नौकरियों, राजनीति तथा हर क्षेत्र में महिलाओं की पूरी भागीदारी होनी चाहिए। ये मांग कई दशकों तक जारी रही। यह आंदोलन अतीत में इतना आगे बढ़ गया था और अति में भी इतना आगे बढ़ गया था कि महिलाओं को पुरुषों पर वरीयता देने की भी बात करने लगा था।
आयतुल्ला खामनेई का ये मानना है कि पश्चिम में महिलाओं के समर्थन के बारे में जो दावे किए जाते हैं उनके बावजूद वास्तविकता ये है कि महिला को उसका वास्तविक स्थान अभी तक नहीं मिल सका। वे कहते हैं कि महिलाओं के बारे में अपमानजनक दृष्टिकोण आज भी पाया जाता है और अंतर केवल इतना है कि इसका स्वरूप बदल गया है। अब ये अपने आधुनिक रूप में मौजूद है। पश्चिमी समाज में आज भी महिला को भोग विलास की वस्तु के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार वहां पर वो आज भी महिला अपने वास्तविक स्थान से बहुत दूर है।
पश्चिमी दृष्टिकोण के विपरीत महिला के बारे में इस्लाम का दृष्टिकोण ये है कि महिला सम्मानीय है, उसका घर तथा समाज में विशेष स्थान है। इस्लाम के हिसाब से महिला भी पुरुष की ही भांति एक प्राणी है। इस्लाम का मानना है कि इंसान होने के हिसाब से महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, दोनों को भले कर्मों का प्रतिफल उनके कर्मों के हिसाब से दिया जाएगा। इस हिसाब से तो दोनों ही बराबर हैं। हाँ, शारीरिक बनावट के हिसाब से पुरुष तथा महिला के बीच अंतर पाया जाता है, इसलिए उनके दायित्व तो अलग अलग प्रकार के हैं। इस्लाम में जिस चीज़ को बहुत अधिक महत्व प्राप्त है वो न्याय है, अर्थात महिला और पुरुष के बीच न्याय पर विशेष ध्यान दिया जाए।
इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली खामनेई कहते हैं कि इस्लाम मानव की परिपूर्णता का पक्षधर है। इस हिसाब से इस्लाम के निकट महिला और पुरुष के बीच कोई अंतर नहीं है। उसकी दृष्टि में परिपूर्णता महत्व रखती है, ना कि मानव का पुरुष या महिला होना। कहीं पर पुरुष के बारे में बात कही जाती है तो कहीं पर महिला के बारे में, कहीं पर पुरुष की प्रशंसा की गई है तो कहीं पर महिला की। इसका कारण यह है कि दोनों ही मानव के दो रूप हैं, एक मानवीय पहलू और दूसरा ईश्वरीय आयाम। इस हिसाब से दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है।
महिला के बारे में इस्लाम का दृष्टिकोण न तो महिलावादियों की भांति इतना अतिशयोक्तिपूर्ण है कि वो महिलावाद ही सब कुछ है और पुरुष का कोई महत्व नहीं है, बल्कि वो एक बेकार की वस्तु है। दूसरी ओर वो महिला को इतना अधिक कमज़ोर मानता है कि उसके अधिकार की अनदेखी की जाती है। इस्लाम ने महिला के बारे में संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है, वो महिलाओं पर अत्याचार करने से मना करता है। ये ईश्वरीय धर्म कहता है कि मानव समाज में संबंधित गतिविधियों में महिला और पुरुष एक समान हैं। महिलाएं शारीरिक क्षमता के अनुसार सामाजिक कर्तव्यों का निर्वाह कर सकती हैं। इस्लाम का कहना है कि महिला का दायित्व तो ये है कि वो परिवार के वातावरण को ऐसा आध्यात्मिक बनाए कि वहाँ के लोग परिपूर्णता के मार्ग पर आगे बढ़ सकें। इस प्रकार वो परिवार और समाज में अपनी भूमिका निभा सकती है।
इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली खामनेई इस्लाम में महिलाओं के अधिकारों के महत्व के बारे में कहते हैं कि इस्लाम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा में कहता है कि महिलाओं पर अत्याचार न किया जाए और पुरुष स्वयं को महिला के स्वामी के रूप में न देखे। हर परिवार के कुछ अधिकार हैं, जिनमें से कुछ पुरुष से तो कुछ महिला से संबंधित हैं। इन अधिकारों को न्याय एवं संतुलन के साथ पेश किया गया है। अब अगर इस्लाम के नाम पर कुछ गलत किया जाता है तो वो वैध नहीं है और हम उनका समर्थन नहीं करते।